60 और 70 के दशक में भारतीय संसद में हिरेन मुखर्जी, नाथ पाई, ज्योतिर्मय बसु और अटल बिहारी वाजपेयी के साथ जिस वक्ता की सबसे ज्यादा धाक होती थी वो थे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के भूपेश गुप्त। एक बार मशहूर थिएटर आलोचक केनेथ टिनन ने कहा था, अंग्रेज कंजूसों की तरह लफ्जों की जमाखोरी करते हैं जबकि आयरिश एक शराबी की तरह उन्हें बाहर निकाल फेंकते हैं। भूपेश गुप्त ने अपने जीवन में कभी शराब नहीं पी, लेकिन राज्यसभा में जब भी वो बोलने के लिए खड़े हुए उनके मुंह से लफ्ज एक आयरिश मैन की तरह ही निकले। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अतुल कुमार अंजान की पहली मुलाकात भूपेश गुप्त से तब हुई जब वो सिर्फ 16-17 साल के हुआ करते थे।
मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के एक प्रदर्शन में दिल्ली आया 1972 में, बहुत कम उम्र का होगा। तब मैंने उस प्रदर्शन में, जो बोट क्लब पे प्रदर्शन था, उसमें भूपेश गुप्ता को बोलते हुए सुना। वहाँ मैंने सुना मधुलिमय जी को, वहाँ मैंने सुना श्रीपाद अमृत डांगे जी को, वहाँ मैंने सुना नाथ पाई जी को। मैं प्रभावित हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ उस सिंह गर्जना को, जिसको सुनने से हृदय में, शरीर में, रोहों में कंपन होता था। भूपेश गुप्ता, क्या शब्द, क्या शब्द का उच्चारण! कोई वो ता अंग्रेजी जानता नहीं था, लेकिन लगता था कि कुछ हमारी बात कह रहे हैं। मैं उठ करके जब वो जाने लगे तो उनके पास जाके खड़ा हो गया, बातचीत किया, हाथ मिलाया उनसे। उन्होंने देखा, अंग्रेजी में पूछा, कहाँ से? हम कहा यूपी से, लखनऊ से। ये पहला मेरा एनकाउंटर था उनसे।
जब भूपेश बोलते थे तो सभापति तक के बूते की बात नहीं होती थी कि वो उनके भाषण में व्यवधान डालें या उनसे कहें, योर टाइम इज अप मिस्टर भूपेश गुप्ता। सुमित चक्रवर्ती मेनस्ट्रीम पत्रिका के संपादक और जाने माने पत्रकार निखिल चक्रवर्ती के बेटे हैं। उन्होंने अपने बचपन से भूपेश गुप्त को बहुत नजदीक से देखा है।
वो होमवर्क तो करते थे बहुत सारे फैक्ट्स फिगर्स लेकर, लेकिन फैक्ट्स फिगर लेने से, ऐसा देने से बहुत स्टेल हो जाता। उसके साथ बहुत कुछ जुड़कर वो बनाते थे। एक सवाल पूछने के समय बहुत बोल रहे थे, तो चेयर से बोला किसी ने कि आप यू कम टू द पॉइंट। तो कहा, सर आई कैनॉट कम टू द पॉइंट, आई एम ट्राइंग टू मेक ए गार्लैंड। तो गार्लैंड ऐसा कहा कि एक माला बन गए, तो एक फूल के साथ दूसरे फूल ये जुड़ने का हम काम कर रहा हूँ, तो इसमें तो समय लगेगा। और एक दिलचस्प बात है, इंदिरा जी ने कहा, वो कहा भूपेश गुप्ता इज ए फेनोमेनन। तो कहा, देखिए भूपेश गुप्ता को आप गैर से देखे थे? वो जब अपने स्पीच खत्म करते उसके बाद वो हियरिंग एड खोल लेते थे ताकि उनके दूसरे ये नहीं। एक दफे नेहरू बोल रहे थे तो बहुत कुछ जो जिसको भूपेश गुप्ता मानते नहीं थे वो खुल गया। तो नेहरू ने कहा, मोस्ट ऑफ अस आर डिप्राइव्ड ऑफ दिस प्रिविलेज ऑफ नॉट लिसनिंग टू व्हाट वी डोंट वांट टू लिसन, व्हिच द ऑनरेबल मेंबर हैज।
भूपेश गुप्त एक कान से ऊंचा सुनते थे और अक्सर जब वो किसी अप्रिय बहस को नहीं सुनना चाहते थे तो अपने ईयरफोन निकाल देते थे। हिरणमय कार्लेकर हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक रह चुके हैं, उन्होंने भूपेश गुप्त के राजनीतिक जीवन को बहुत नजदीक से देखा है।
एक तो है, उनके साथ अगर आप बात करना चाहते हैं तो बहुत जोर आवाज उठा के बात करना पड़ता, क्योंकि कान में सुनते कम और वो यंत्र व्यवहार करके उनको सुनना पड़ता। दूसरा, बहुत खुला आदमी था, जो मन में आता बुम बता देते। तीन, कंट्रोवर्शियल बात करने में उनको बहुत मज़ा आता, एक बात करके छोड़ दिया, उसके बाद मज़ा देखते उसका नतीजा क्या हुआ, और जिसका टारगेट करके छोड़ा वो एकदम नाजुक बन जाता, क्योंकि वो ऐसा बात नहीं करते थे। जब किसी को कुछ कहते थे तो सोच विचार करके ऐसे बात जिसको कुछ असर होगा वो छोड़ते थे, और सेंस ऑफ ह्यूमर तो काफ़ी था।
संसद में वो जो कुछ भी बोलते थे उसकी वो बाकायदा तैयारी करते थे।
फिरोजशाह रोड पे जब वो रहते थे तो मैं वहाँ जाता था, मुझे कई बार उनके साथ रात वहीं रहने का, मैं लखनऊ से आता था तो सामान वामान बैग रख दिया तो वहीं रहता था, वहीं खाता था। साधारण प्रवृत्ति के आदमी थे, संसद वो पैदल ही जाते थे, कुर्ता धोती चप्पल और एक जवाहर बास्केट, वो भी एक तरह से लटका चिमड़ा मुचड़ा हुआ। आजकल के जो राजनीतिज्ञ हैं इसका मतलब कि एकदम कुर्ता पजामा स्वच्छ, तीनों पाल लगा हो, एकदम तंच हो, कलफ से माड़ी से कड़कड़ाता हुआ हो, नहीं। गाड़ी पर नहीं चलते थे, पार्टी की एक पुरानी एम्बेसडर थी, उससे कभी चले आते थे या चले जाते थे, वरना पैदल संसद में, तब तो संसद सदस्यों के लिए बस की भी व्यवस्था नहीं थी जब वो संसद सदस्य बने थे पहली बार। आज तो अच्छी बस है, एयर कंडीशन, उस पर भी लोग नहीं जाते हैं। आज तो भारतीय संसद के दरवाजे पर खड़े हो जाइए तो कौन सी नई कार निकली है ये उसका ज्ञान आपको हो जाएगा कि इस देश के अंदर धन से पर्याप्त ओतप्रोत इतने सांसद हैं।
मेन स्ट्रीम के पूर्व संपादक निखिल चक्रवर्ती उपेश गुप्त को उनके लंदन के दिनों से जानते थे। उनकी मौत के बाद उन्होंने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा था,
भूपेश संसदीय बहस के लिए बहुत तैयारी करते थे। उनकी मेज कागजों से भरी होती थी, वो अपने निजी सचिव खुद थे। उनका कमरा हमेशा बेतरतीब रहता था, लेकिन वो मेज हमेशा साफ सुथरी होती थी जिस पर वो काम करते थे। संसद में ध्यान आकर्षित करने के कई तरीके हुआ करते थे। एक था राजनारायण स्टाइल, जहां आप मस्खरा बनकर ध्यान खींचते थे, और दूसरा था संजय गांधी स्टाइल, जहां आप ताकत और स्वर के जोर पर अपनी बात मनवाते थे। भूपेश को इसलिए सुना जाता था क्योंकि वो हमेशा बेइंसाफी और असमानता के खिलाफ आवाज उठाते थे।
भूपेश गुप्त की अकेली संपत्ति उनकी किताबें थी। उनके पास बहुत कम कपड़े होते थे, अगर कोई उन्हें कोई कपड़ा भी देता तो वो उसे किसी जरूरतमंद को दे देते थे। कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व नेता मोहित सेन उनके बहुत करीबी थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा द ट्रैवलर एंड द रोड में लिखा है,
जब वो मरे तो उनके बैंक अकाउंट में बहुत कम पैसे थे। उनके पास किताबें, नोटबुक्स और बहुत मामूली वार्डरोब के अलावा और कुछ नहीं था। मुझे वो बहुत पसंद करते थे और अक्सर हम उनके फिरोज शाह रोड वाले घर से बंगाली मार्केट पैदल जाया करते थे, जहां वो गोलगप्पे और मिठाइयां खाते थे। 30 के दशक से ही वो इंदिरा गांधी से बहुत जुड़े हुए थे और उनके और फिरोज गांधी के बीच संदेश वाहक का काम करते थे। लेकिन 1977 के बाद वो उनके सख्त खिलाफ हो गए थे, हालांकि उन्होंने इमरजेंसी का समर्थन किया था। उसके बाद वो उनसे निजी तौर पर कभी नहीं मिले।
भूपेश गुप्त और इंदिरा गांधी की दोस्ती के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। इंदिरा गांधी, उनके होने वाले पति फिरोज गांधी और भूपेश गुप्त तीनों ब्रिटेन से एक ही पानी के जहाज से वापस भारत लौटे थे। इंदिरा गांधी की नजदीकी दोस्त पुपुल जयकर ने उन पर लिखी जीवनी में लिखा है,
जब इंदिरा गांधी फिरोज से शादी करने के मुद्दे पर अपने पिता को नहीं मना पाई तो वो और फिरोज कम्युनिस्ट नेता और अपने बहुत अच्छे दोस्त भूपेश गुप्ता के पास गए। जब भूपेश ने यह सुना तो वो फिरोज की तरफ मुड़कर बहुत गंभीरता से बोले, क्या तुम वफादार रह पाओगे? फिरोज जोर से हंसे और घुटनों के बल बैठकर बोले, क्या तुम चाहते हो कि मैं वफादारी का प्रण लूं? भूपेश गुप्ता ने फिरोज गांधी को जवाब नहीं दिया, बल्कि इंदिरा गांधी की तरफ मुड़कर पूछा, क्या तुम वास्तव में फिरोज से शादी करना चाहती हो? उनको पता था कि इंदिरा जिद्दी हैं और उन्हें कोई ताज्जुब नहीं हुआ जब उन्होंने कहा कि वो फिरोज से शादी करना चाहती हैं। भूपेश ने तब दोनों से कहा कि वो महात्मा गांधी से सलाह लें।
इंदिरा गांधी से इतनी नजदीकी होने के बावजूद जब उन पर राजनीतिक हमलों की बात आती थी, भूपेश गुप्त कभी पीछे नहीं हटते थे।
इंदिरा गांधी के साथ उनके संबंध नीतियों के सवाल पर बहुत कठोर होते थे, कई अवसरों पर उनके साथ होते थे, लेकिन मुझे लगता है कि ऑक्सफोर्ड के अध्ययन काल में कुछ बहुत जीवंतता थी दोनों के बीच में, बहुत निकटता थी। मैंने अपनी सामने एक घटना देखी थी, फिरोज शाह रोड पे वो रहते थे, मैं रात में उन्हीं के यहाँ रुका था, सुबह 11 बजे तक। उन्होंने सुबह न्यू एज का एडिटोरियल लिखा और लिख करके बैठे हुए थे अखबार में, फिर वो पार्लियामेंट में कोई संसदीय समिति की बैठक हो रही होगी उसमें जा रहे थे। सब चाहते थे पार्लियामेंट में कि भूपेश उनकी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर बने। मैं उनके साथ जा रहा था फिरोज शाह रोड से पार्लियामेंट की तरफ, आगे गाड़ियों के 3 गाड़ियां 4 गाड़ियां, उस समय ये काफिले नहीं चलते थे, ये मंत्रियों को प्रधानमंत्री के साथ काफिला और आगे पीछे सड़क खाली करा दो, सिटी बजा दो, रास्ते पर पुलिस लगा दो और जैमर साथ में चल रहे हैं। आतंकवाद के बाद से सब घटनाएं घटने लगी हैं। प्रधानमंत्री उस समय इंदिरा जी थी, जा रही थी, एकदम से गाड़ी रुकी और शीशा उतार करके भूपेश भूपेश कोई बोल रहा था महीन आवाज से। गाड़ी रुक गई, देखा इंदिरा जी चेहरा उनका, मुझे लगा मैं पहचान गया कि इंदिरा गांधी है। थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खोला उन्होंने और वो भूपेश को कह, आओ भूपेश, भूपेश नहीं नहीं नहीं, नहीं जाओ। फिर वो उतरी, फिर मैंने देखा कि वो उनको पकड़ रही है, उनका नहीं नहीं, मैंने वो भी देखा। तब मुझे कुछ लगा कि ये एक सिर्फ अद्वितीय सांसद और देश के प्रधानमंत्री के बीच का मामला नहीं, ये बहुत गहरा आत्मीय संबंध है।
भूपेश गुप्त ने 1975 में लगाए गए आपातकाल का समर्थन किया, लेकिन बाद में उन्हें अपने इस फैसले पर पश्चाताप भी हुआ।
उस वक्त उन्होंने पार्टी लाइन ली, जैसा था कि इमरजेंसी को सपोर्ट करना है, उसके खिलाफ वो नहीं गए। मेरे पिताजी तो पहले दिन से इमरजेंसी के खिलाफ थे और लिखते भी थे। वो एक बातचीत हुआ तो उन्होंने कहा, हाँ जो लिख रहे हो बहुत अच्छा लिखा हो, ये सही बात है जो कुछ कर रहे हो। तो मेरे पिताजी ने पूछा, अगर आप समझते हो कि मैं जो लिख रहा हूँ वो सही है तो आप क्यों नहीं लिख रहे हो? तो उन्होंने कहा, ये लिखिए, आप लिखते जाओ, मैं तो आई एम बाउंड बाई पार्टी डिसिप्लिन, मैं लिख नहीं सकता हूँ। इमरजेंसी के समय में ये था, लेकिन इमरजेंसी खत्म होने के बाद जब कम्युनिस्ट पार्टी लाइन चेंज किया, उस वक्त भूपेश गुप्ता उन्होंने कहा, ये जो मेरा उंगली, इससे हमने वो साइन किया था इमरजेंसी सपोर्ट करने का, मुझे लगता है ये उंगली में काट दू, इतने ये हो गए।
जब 1980 में अचानक इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी का एक हवाई दुर्घटना में निधन हो गया, घोर राजनीतिक विरोधी होते हुए भी भूपेश गुप्त ने संजय गांधी को जिस तरह की भावभीनी श्रद्धांजलि दी, वैसी शायद किसी ने भी नहीं दी। भूपेश गुप्त बोले,
कई मौके होते हैं जब नियमों को ताक पर रख दिया जाता है। अगर नियमों को ताक पर नहीं रखा गया होता तो 23 जून को हुई दुर्घटना न हुई होती, जिसने देश के प्रधानमंत्री के बेटे, सत्ताधारी पार्टी के महासचिव और 25 सालों तक मेरे दोस्त रहे फिरोज गांधी के छोटे बेटे, और अगर मुझ पर चापलूसी का इल्ज़ाम न लगाया जाए तो मेरी दोस्त इंदिरा गांधी के भी बेटे के प्राण ले लिए। मैं बहुत भरे दिल से ये सब कह रहा हूँ।
1981 में जब भूपेश गुप्त का निधन हुआ और उनके पार्थिव शरीर को अजय भवन लाया गया, तो इंदिरा गांधी स्वयं उन्हें श्रद्धांजलि देने कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यालय पहुंची। उस समय अतुल अंजान भी अजय भवन में मौजूद थे।
उन दिनों मुझे याद है कि मेरी आंख में लाल आंख चढ़ गई थी मेरी, तो मैं काला चश्मा पहन के पीछे खड़ा था, वो तस्वीर है अभी भी। और जब मैं देखा कि एक इंदिरा जी के आने की बात हुई, पुलिस सब ये सब लग गया सब, तो इंदिरा जी आई थी और श्वेत परिधान में थी, एकदम सफेद, और आंख में काला चश्मा लगाई थी। और जब वो भूपेश की जी की पार्थिव शरीर के पास आई तो बड़ी देर तक खड़ी रही, और खड़े रहते हुए फिर उन्होंने वो चक्कर लगाया, और चक्कर लगा के जब भूपेश जी के वो कैस्केट पे रखा हुआ था शीशे के पास जिसमें उनका मुंह पूरा दिखाई दे, तो वहां गई तो बड़ी देर तक पूरी गर्दन लंबी सी निकाल कर भूपेश जी के चेहरे को देखती रही, और मैं बगल में खड़ा था, मैंने देखा कि लगातार टप 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 उनके काले चश्मे से आंसू बह रहे हैं। बहुत देर तक खड़ी रही, फिर वो आई, फिर भूपेश को देखा उन्होंने, फिर आकर के खड़ी हो गई कमांडर राजेश्वर राव, कमांडर एन के कृष्णन, कमांडर इंद्रदीप सिंह और दूसरे तमाम लोगों से, मदन लाल खुराना जी भी वहां मौजूद थे, एम फारूकी साहब थे, उन सबसे बड़ी देर तक बात करती नहीं।
रेहान फदल, BBC दिल्ली।